सबसे पहले तो आप सबका मीठे बाबा के घर में बहुत 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 स्वागत है। आप सभी बाबा के दिल तक नशीन, नूरे रतन, बाबा की मस्तक मणि हैं। आपने कई बार मुरली में सुना होगा, अभी भी कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि बाबा, एक शिव बाबा सच्चित आनंद स्वरूप है। एक तो भगवान शिव बाबा वो सच्चित आनंद स्वरूप है और दूसरे देवताएं सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आज यही विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमें देवता बनना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। हम मनुष्य से ब्राह्मण तो बन गए, अब देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए हमको सच्चित आनंद स्वरूप बनना पड़ेगा। तो ये सच्चित आनंद स्वरूप क्या है, शिव बाबा कैसे सच्चित आनंद स्वरूप है और हमें कैसे सच्चित आनंद स्वरूप बनना है, क्योंकि मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, हमारी यात्रा है। इस यात्रा को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सच्चित आनंद स्वरूप बनना पड़ेगा। तो इसी गहराई में समझेंगे आज हम कैसे बाबा सच्चित आनंद स्वरूप है और हम कैसे, अभी हम क्या स्टेज में हैं और क्या विधि है देवताओं समान, बाप समान सच्चित आनंद स्वरूप बनने की। पहले तो हम इस वर्ड की परिभाषा देख लें, सत्य, सत सत शब्द क्या है, सत्य क्या है। सत्य शब्द जो है, सच्चित जो हम कहते हैं ना, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है और सृष्टि रूपी ड्रामा सत्य है, चार चीज सत्य है इसमें। तो सत्य की क्या परिभाषा है, सत्य की परिभाषा में दो मुख्य बातें आती हैं। पहला, सत्य एटर्नल होता है, एटर्नल माना बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होता, सत्य जन्म और मरण से परे है, सदाई है। दूसरा, सत्य अनचेंजेबल होता है, अपरिवर्तनशील होता है, सत्य कभी बदलता नहीं है, जैसा होता है वैसा ही रहता है, सदा ही वैसा रहता है। तो दो विशेषताएं सत्य की होती हैं। तो एक इंसान में क्या सत्य है, देह सत्य है, देह सत्य है, देह सत्य है, सत्य है, देह सत्य है कि झूठ है, झूठ है ना। एक दिन पैदा हुई, एक दिन मर जाएगी। रोल, ये जो हमें रोल मिला है समाज में, मेल फीमेल, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बॉस, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये क्या है, सत्य है, सत्य है, सत्य है ना, बदलता रहता है ना, बदलता रहता है ना, नहीं तो ये असत्य है। तो सत्य, एक तो परमात्मा, सबसे बड़ा सत्य कौन सा है, यूनिवर्सल सत्य कौन सा है, परमात्मा। परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही एटर्नल है, जन्म मरण से परे है, जन्म मरण से परे है, पुनर्जन्म रहित है। तो परमात्मा सत्य है। दूसरा, आत्मा सत्य है, आत्मा जन्म मरण से परे है किंतु उसका रूप वैसा ही रहता है, हमेशा परिवर्तन नहीं होता, किंतु उसकी स्थिति परिवर्तन होती है। जैसे हम सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। ये नहीं कहते सत्य ही, ये आजकल दुनिया में बोलते सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम का यथार्थ अर्थ है शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है, शिव ही सदा सत्य है, अर्थात परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही जन्म मरण से परे है और सदा ही क्या है, अपरिवर्तनशील है। उसकी स्थिति भी अपरिवर्तनशील है, शेप भी, रूप भी अपरिवर्तनशील है, किंतु आत्माएं आधा कल्प सत्य हैं, आधा कल्प असत्य हैं। सत्य माना आधा कल्प क्या है, सतो प्रधान है, मतलब आधा कल्प हम आत्मा ही क्या है, हम सोल कॉन्शियस रहती हैं, हम देही मानी रहती हैं, हम आत्मा मानी स्थिति में रहते हैं, हमें हमेशा ही ये भान रहता है मैं आत्मा हूं, चाहे हम सत्ययुग में रहें चाहे त्रेता युग में रहें। 20 के 20 जन्म हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, एक जन्म हम सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करते हैं, 20 जन्म सोल कॉन्शियस रहते हैं, ऑटोमेटिकली रहते हैं, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, वो प्रलब्ध स्थिति है। और आधा कल्प हम क्या करते हैं, देह अभिमानी रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, देह अभिमान, देह हमारी स्थिति खत्म हो जाए, आत्मा हमारी स्थिति खत्म हो जाती है, कितना ही अभ्यास करो क्या हो जाता है हमारे अंदर, देही बॉडी कॉन्शियस ही रहते हैं हम। ब्राह्मण बनने के बाद भी ज्यादातर क्या रहते हैं, हम सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करते हैं किंतु सोल कॉन्शियस बने नहीं है, अभी भी हमको अभ्यास करना पड़ता है, अटेंशन रखनी पड़ती है, जैसे ही अटेंशन कम होता है हम तुरंत बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। नंबर वन दुश्मन कौन है हमारा, देह अभिमान है ना, देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस नंबर वन है ना। गीता ना, योगी वही है जिसने किसको मारा हो, अहंकार को मारा हो ना, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसका भान है जो हमारा, उसके कारण जो ईगो है, अभिमान है, वो बहुत पावरफुल है, इससे हमें निकलना है। तो सत्य का अर्थ क्या हुआ, आत्मभिमान स्थिति, परमात्मा सदा ही आत्मभिमानी है, विदेही है, अशरीरी है, किंतु हम आत्माएं आधा कल्प सत्य माना आत्मभिमानी है और आधा कल्प देह अभिमानी है, इसलिए हम असत्य हो जाते हैं। वैसे हम परमात्मा नंबर वन सत्य, दूसरा सत्य क्या है, आत्मा। और शिव बाबा ही सदा सुंदर है, सदा सुंदर माना सदा ही प्योर है, एवर प्योर है, एवर पावन है। आत्माएं, हम आत्माएं आधा कल्प सुंदर है और आधा कल्प श्याम है ना। आधा कल्प हम कैसे जाती हैं, पतित बन जाती हैं, पावन आधा कल्प पावन, आधा कल्प पतित, तो इसलिए श्याम सुंदर है ना। तो सत्य शब्द के इसमें दिखना बहुत जरूरी है कि सत्य माना ये। तो राजयोग का मेडिटेशन क्या है, राज्य और ये तीसरा सत्य क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, सदा ही है, वो सर्व संबंध है, हर समय है, हर जगह है, आत्माओं के संबंध बनते हैं और टूट जाते हैं। किसी के यहां पैदा हुए तो माता पिता बने, शरीर छूट गया, माता पिता खत्म, अगले माता पिता मिलेंगे, फिर उनके यहां पैदा हुए, फिर वहां से शरीर छोड़ा, फिर वो खत्म, फिर नए मिलेंगे, पति पत्नी बने, माता भाई बहन बने, संबंध खत्म। तो आत्माओं के संबंध सदा नहीं होते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं और खत्म होते हैं, किंतु आत्मा परमात्मा का संबंध सदा ही है, सदा ही है। इवन सत्ययुग त्रेता में भी है, द्वापर कलयुग में भी है, संगम में तो है ही है, संगम में उसका हम अनुभव करते हैं, द्वापर कलयुग में उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम मांगते हैं उस संबंध को, और सत्ययुग त्रेता में उसके स्वरूप है, परमात्मा हमारे संस्कारों में समाया हुआ है, हमारे हर संस्कार में समाया हुआ है, हमारे रूप में समाया हुआ है, इसलिए देवी देवताओं को भी भगवान कह देते हैं, भगवान भगवती कह देते हैं, उसका स्वरूप है हम सत्ययुग त्रेता में। इसलिए हमसे ये भासना आती है लोगों को कि भी देवी देवता भगवान है ना, उनकी पूजा की जाती है। तो आत्मा परमात्मा का संबंध भी सदा और सर्व संबंध है, हर समय है, चाहे दिन में, रात में, आधा रात, 2 बजे, 1 बजे, किसी समय भी, और हर जगह है, आप किसी स्थान पे हो, कहीं भी हो, बाथरूम में हो, प्लेन में हो, रॉकेट में हो, धरती के नीचे चले जाओ, खान में चले जाओ, कितना भी नीचे चले जाओ, वहां भी आत्मा परमात्मा का संबंध है। अगर आत्मा वहां रहकर के भी परमात्मा को याद करे तो परमात्मा की शक्ति उसको महसूस होती है, परमात्मा उस संबंध की अनुभूति कराता है। और चौथा जो सत्य है वो है कर्म, ड्रामा कह सकते हैं हम, कर्म, जो हम कर्म कर देते हैं वो अमिट हो जाता है, उसको कुछ चीज विनाश नहीं कर सकती है, उस कर्म का फल के लिए हम बांधे रहते हैं, आत्मा बंध जाती है, अच्छा कर्म करे तो उसके लिए बंध जाती है और बुरा कर्म करे तो उसके लिए बंध जाती है, कर्म कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए कहा सृष्टि रूपी ड्रामा में, ड्रामा का रहस्य क्या है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, कर्म कर रही है। और शिव बाबा शिवपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है, जो हुआ, किसने मेरी इंसल्ट की, गाली दी, तंग किया या सुख दिया या महिमा की, अच्छा हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब था। पिछले जन्म में मैंने इसे कर्म किए तो उसका फल मुझे इस जन्म में संबंधों के द्वारा ही मुझे सुख या दुख मिला है, ब्याज के साथ मिला है, जो हुआ अच्छा हुआ है। सारी प्रॉब्लम हमारी कहां है, जो हुआ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। 90% विचार हमारे पास से आते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, उसे चित्त कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ही है चित्त। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम गलत काम करते हैं वो चित्त में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जब हम असत्य कर्म करते हैं, कुछ भी असत्य करते हैं, असत्य सोचते हैं, असत्य देखते हैं, असत्य पढ़ते हैं, असत्य सुनते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य खाते हैं, असत्य व्यवहार में जाते हैं, असत्य संबंध संपर्क रखते हैं, मतलब देह के संबंधों में खोए रहते हैं, तो वो चित्त में रिकॉर्ड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होते हैं। और वो जो चित्त जो है, जब हमारा दिल में असत्य आ जाता है, जब मेरी कॉन्शियसनेस में, चेतना में, कॉन्शियस में, अंतरात्मा में, ये एक ही शब्द है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, चेतना, दिल, हार्ट ऑफ द सोल, ये एक ही चीज है। अगर मेरे दिल में सत्य है, मेरी चेतना में है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये जो मैंने बताया अभी चार बातें, आत्मा, परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध और ड्रामा, इसको इंग्लिश में, हम हिंदी में ABCD कह देते हैं ना, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, और डी फॉर ड्रामा। तो जो अगर मेरे दिल में सत्य है, कॉन्शियसनेस में सत्य है, चेतना में सत्य है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, चाहे मां का संबंध हो, चाहे बाप का संबंध हो, टीचर का संबंध हो, गुरु का संबंध हो, बंधु माना बड़े भाई का संबंध हो, सखा का संबंध हो, दोस्त, खुदा दोस्त कहते हैं ना, साजन का संबंध हो, सज्जन का संबंध हो, बच्चे का संबंध, ये मुख्य 9 संबंध तो बहुत अनुभव होना चाहिए हर आत्मा को, हर ब्राह्मण को, इन 9 संबंध का बहुत गहरी अनुभव की अथॉरिटी होना चाहिए। अगर इन संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी हम बन जाएं, तो दुनिया के संबंध हमें सताएंगे नहीं, दुनिया के संबंध हमें याद नहीं आएंगे, क्योंकि मुख्य हर इंसान के 9 ही संबंध होते हैं, बाकी संबंध कभी कभी यूज में आते हैं, ये मुख्य संबंध 9 ही हम दिन रात इन संबंधों में दुनिया में ढूंढते हैं, उसकी ही हमारे चाह रहती है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे माँ का प्यार मिले, मुझे बाप का प्यार मिले, मुझे अच्छा टीचर मिले, मुझे अच्छा गुरु मिले, मुझे अच्छा मेरा भाई बहन अच्छे हो, मेरा कोई अच्छा दोस्त हो जो मेरी दिल की बात सुने, मेरा साजन जो मुझे ऐसा कोई प्रेम करने वाला हो या प्रेम करने वाली हो जो मेरे लिए ही हो, सर्जन ऐसा डॉक्टर मेरे पास कोई पर्सनल हो जो मेरी हर बात को ठीक कर दे, है ना, और बच्चा जरूर होना चाहिए ना, एक बच्चा भी हो, है ना, जो सुख दे, जो बुढ़ापे मेरी मदद करे, है ना, और जिसके नाम में वारिस, जिसको मैं वारिस बना सकूं, ये मुख्य 9 संबंध की हमें गहरी, हमने आधा कल्प से किस किस से अनुभूतियां की, देहधारियों से अनुभूति की है, इसके हम अभ्यस्त बन चुके हैं। आज मनुष्य की चेतना में यही है, देह में ही, अपनी देह और दूसरों के देह में संबंधों में खोए हुए हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन चलता है। आज हम इसी बात को गहराई समझेंगे कि ये संबंध कैसे हम अनुभव करें बाप से। और ड्रामा, चौथा ड्रामा, हम 90% हमारे विचार पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आते हैं, जो हमारे जीवन में चोट लगी होती है, भावनाओं को चोट लगती है, हमारे मन को चोट पहुंचती है, अंदर वही रिकॉर्ड होती है। जैसे आपको अगर हम कहें, अगर आपके पास 10 लीटर दूध हो اور 10 لیٹر دودھ میں ایک مکھی گر جائے, ایک برتن میں 10 لیٹر دودھ ہے اس میں ایک مکھی گر گئی, تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ 10 لیٹر دودھ نظر آئے گا, مکھی نظر آئے گی, کیا نظر آئے گی؟ مکھی نظر آئے گی نا. تو یہ جو ہے ہماری جو جیون میں ماتا پتا سے ہمارا سمبندھ ہوتا ہے, بچوں سے سمبندھ ہوتا ہے, یا ہمارے پتی پتنی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہے نا, ان سے ہمیں بہت پالنا ملتی ہے بچپن سے, گرو سے, ٹیچر سے بہت پالنا ملتی ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی بات کبھی ہمیں کرٹیسائز کر دیں, کبھی ہمیں غلط بول دیں, غلط ویوہار, وہی ریکارڈ ہو جاتی ہے, وہ مکھی ہمیں اندر ریکارڈ ہو جاتی, اور جب جب ان سے ملتے تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ آدمی نظر نہیں آتا ہے, وہ سمجھ نظر نہیں آتا, کیا نظر آتا ہے؟ وہ مکھی دکھائی دیتی ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اس نے میرے ساتھ بہت اچھے کرم بھی کیے ہیں, بہت سکھ بھی دیا ہے, کنتو وہ یاد نہیں آتا ہے. اس لیے سمبندوں میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو کنتو پرماتما سے ہمارا سمبندھ, منشیوں کا سمبندھ لین دین کا سمبندھ ہے, پرماتما سے ہمارا لین دین کا سمبندھ نہیں ہے. پرماتما داتا ہے, ہم جو ہیں جیسے ہیں پرماتما کو سویکار ہے. ہر سمبندھ سے بابا ہمیں پالنا دیتا ہے, وہ ہیلنگ سمبندھ ہے. دنیا والے سمبندھ کیا ہے؟ چوٹ دینے والے سمبندھ ہیں, ہرٹ کرنے والے سمبندھ ہیں. پرماتما کا سمبندھ ہیلنگ سمبندھ ہے, گھاؤ بھرنے والا سمبندھ ہے, انوبھوتی کرانے والا سمبندھ ہے, سکھ کی انوبھوتی, اتیندے سکھ آنند کی انوبھوتی کرانے والا سمبندھ ہے. تو ہمیں بہت گہرائی سے اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس ایک ایک سمبندھ کی انوبھوتی کرنا ہے. یہ میرے دل میں ہونا چاہیے, اس کی انوبھوتی مجھے دل میں ہونی چاہیے گہرائی سے, ایک ایک سمبندھ کی انوبھوتی. اور ڈراما, سسٹر روپی ڈراما کا مجھے بہت گہرائی سے گیان ہونا چاہیے کہ یہ میرے جو ماتا پتا, بھائی بہن, پتی پتنی, میرا آفس میں رہنے والے, کام کرنے والے باس, یا نیچے کام کرنے والے, یا میری گھر میں آنے والی آیا کام والی بائی یا نوکر, یا کوئی بھی ہیں نیچے اوپر کام کرنے والے, میری فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ, کوئی بھی ہیں جو میرے سمبندھ سمپرک میں آتے ہیں, پڑوسی ہیں, وہ بھی میرے کرموں کا حساب کتاب ہے, پچھلے جنم کے کرموں کا حساب کتاب ہے, اور وہ مجھ سے ویسا ہی کرنے والے ہیں جیسا میں نے ان سے پچھلے جنم میں کیا ہوا ہے. سکھ دیا سکھ دینے والے بیاج کے ساتھ, دکھ دیا تو دکھ دینے والے بیاج کے ساتھ. اس لیے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا ہے, تو جو ہوا اچھا ہوا, اور جو ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے, کیونکہ اب بابا کی گود میں ہیں ہم. براہمن کا ارتھ بابا کی گود میں ہے, سوکشم وطن میں باپ دادا کی گود میں ہے. اگر ہمیں یاد ہے, جیسے آج کل کی مرلی تھی نا, اگر ہمیں یاد ہے ہم پرشوتم سنگم یوگ واسی ہیں, تو ہم بابا کی گود میں ہیں. میرا بابا کون ہے؟ سویٹ کا پہاڑ ہے. مجھے کیا بنانے آیا ہے؟ موسٹ سویٹ, دیوتاؤں کو موسٹ سویٹ کہتے ہیں نا, سویٹسٹ کہتے ہیں, تو میرا بابا مجھے سویٹ بنانے کے لیے. کیسے بنیں گے؟ باپ کی یاد اور ورثے کی یاد سے بنیں گے, جیسے آج کی مرلی تھی نا. تو یہ ہم کو اپنی جو بدھی ہے, جیسے آتما کی تین چیزیں, بدھی, من اور سنسکار. تو بدھی میں کیا چیز ہے؟ بدھی کیا چیز ہے؟ بدھی میں چار آسپیکٹ ہیں بدھی کے. چار, بدھی تو کچھ ستھول نہیں ہے, جیسے آتما ستھول نہیں, آتما سوکشم ہے, ایسے ہی من بھی, بدھی بھی سوکشم ہے, من بھی سوکشم ہے اور سنسکار بھی سوکشم ہے. کیا ہے بدھی؟ یہ جو سچت آنند سوروپ کی بات ہے, کیا ہے یہ؟ بدھی کی بات ہے. سچت آنند سوروپ جو استھتی ہے وہ بدھی کی استھتی ہے. من کی استھتی کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, پہلے بدھی کی استھتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بدھی میں چار چیزیں ہیں. پہلی ہے کانشیسنیس, جو میں بات کی کانشیسنیس, کانشینس یا انترآتما یا چیتنا یا دل, ہارٹ آف دا سول. پہلی چیز جو آتما ہے نا, جب بندو ہے آتما, تی سوکشم چیتن جوتی بندو ہے, پوائنٹ سورس آف انلمیٹڈ انرجی ہے, سات انرجی کا پنج ہے آتما, اس سے ہمیشہ سات انرجی نکلتی رہتی ہے. تو آتما جو یہاں ہے, یہاں سے 2.5 انچ اندر, یہاں سے 3 انچ نیچے, آتما سے سات انرجی نکل رہی ہے ہمیشہ. اور جہاں یہ سب سے زیادہ ہیں, جیسے بلب ہے یا دیپک ہوتا ہے, اس کے آس پاس سب سے زیادہ لو ہوتی ہے, سب سے زیادہ لائٹ وہاں ہوتی ہے, اس کو ہم کانشیسنیس کہتے ہیں. یہ آتما کی دل ہے, جہاں سب سے زیادہ ساتوں انرجی ہیں, سب سے زیادہ گیان ہے, سب سے زیادہ شدھ ہے, پوتر ہے, سب سے زیادہ شانت ہے, سب سے زیادہ روحانی پریم ہے وہاں پر. हमारी कॉन्शियसनेस में सबसे ज्यादा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति उसी में है, सदा आनंद की अनुभूति उसी में है, शक्तियां भी सब उसी में ही। ये सातों एनर्जी जो है मुख्य जो उसका जो सेंटर है वो दिल है, चेतना कहते हैं, चेतना हमारी चेतना में है वो बात। सत्युग में ये चेतना भरपूर होती है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हमारे संस्कारों में समाया है, एक एक संबंध की अनुभूति हमारे संस्कारों में समाई है, और ड्रामा एक बार में क्लियर रूप होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है सोचना नहीं पड़ता, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सबसे अच्छा होने वाला ऑटोमेटिक, हम क्योंकि हम प्रारब्ध पा रहे हैं। तो चेतना में ये चीज ये रहता है ABCD ज्ञान, सत्य ज्ञान रहता है कॉन्शियस, और उसके उससे बनता है हमारा विवेक, ज्ञान से बनती है पवित्रता। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, आप मुरली में पढ़ते हैं, हम मुरली में पढ़ते बार बार बाबा पढ़ते बाबा से सुनते हैं कि बाबा हमें ये ज्ञान सुनाता है, यही बाबा की आशीर्वाद है, यही बाबा की कृपा है। अब पावन बाबा पतित पावन है, कैसे पतित पावन है, कैसे पतित पावन है कि बाबा ऐसे करता ऊपर से हमको पतित ऊपर से बैठ के हमको पतित से पावन बना देता है, क्या करता है बाबा, पवित्रता का सागर हमें ऊपर से बैठ के पवित्र बना देता है, ऐसा है क्या, क्या समझते हैं बहनें, क्या समझती हैं, बाबा ऊपर से बैठ के हमको पवित्र बनाता है या सामने स्टेज पर आकर के पधरामणी होती है तो बाबा हमको पवित्र बना देता है, दृष्टि से पवित्र बना देता है, ऐसा है क्या, क्या समझते हैं आप लोग, बाबा दृष्टि से हमको पवित्र बना देता है, नहीं नहीं, बाबा ऐसे हमको पवन नहीं बनाता है। जितना बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान मैं ज्ञान सुनाता हूं तुमको, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं, आत्मा परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का संबंध का, ड्रामा का, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं मैं तुम्हें, तीसरा ज्ञान का ज्ञान सत्य की समझ का तीसरा नेत्र देता हूं, सत्य की समझ का तीसरा नेत्र देता हूं, मतलब तुम्हें समझ देता हूं कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, तुम किसी मनुष्य की संतान, तुम आत्मा मनुष्य की संतान नहीं, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध किसी और से नहीं है, मुझसे तुम्हारे सर्व संबंध है, और ड्रामा सृष्टि रूपी ड्रामा में कोई से ने तुम्हारा नुकसान नहीं किया है, तुम्हारे शरीर का रोग, तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारी परिस्थितियां किसी मनुष्य के कारण नहीं आई है, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, ये सत्य की समझ हमको देता है। जो हमारे अंदर सत्य भरा हुआ है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को टोना कर दिया, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने मेरा जीवन को बर्बाद कर दिया, नहीं इसी के कारण मेरे को प्रॉब्लम है ना, तो हम सदा यही समझते रहते हैं, ये सत्य था, भगवान हमें सत्य की समझ दे रहा है, परमात्मा ये ज्ञान मन सत्य की समझ हमको देता है, सत्य परमात्मा सत्य हमको सत्य की समझ ये पढ़ा रहा है, समझा रहा है। जितना हम सत्य की समझ को मनन करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बताइए मुरली, ये मुरली क्या है, आज की मुरली हमने सुनी कितनी बढ़िया मुरली थी, कल की मुरली कितनी बढ़िया थी, संडे की मुरली कितनी वंडरफुल थी, रोज की मुरली वंडरफुल है। जितना इस मुरली को हम पढ़ते हैं, जितना इस मुरली को पढ़ते हैं, ये बाबा का लव लेटर है ना हम आत्माओं के लिए। अगर आप किसी कोई आपको रोज लव लेटर लिखे और रोज उसको पढ़ते जाओ, एक दिन नहीं मानो, दो दिन नहीं मानो, तीन दिन नहीं मानो, चौथे दिन नहीं मानो, पांचवें दिन नहीं मानो, क्या होगा, वो क्या लिखता है, आप बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरे नैनों के नूर हो, मेरे तुम्हारे बगैर तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं तुम्हें ही देखता रहता हूं, तुम्हारे सोचता रहता हूं, तो क्या होगा, हमें अपने आप उससे प्यार हो जाएगा। तो बाबा के लेटर सुनते सुनते कितने साल हो गए, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए, 20 साल हो गए, रोज रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, जेब में रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं, तो प्यार नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ प्यार अभी तक, प्यार हुआ ना, तो लव लेटर, ये जो बाबा का लव लेटर है ना, ये बाबा का ज्ञान, जितना इस ज्ञान का मनन मन रिवाइज करते हैं, चिंतन मना मुझे तो ऐसा बनना ही है, इसी चिंतन में रहते हैं, इसी चिंता में रहते हैं, चिंता नेगेटिव है, चिंतन पॉजिटिव है, और फिर मंथन कैसे बनना है, कैसे बनना है, मुझे तो बनना है, चिंतन माना मुझे मुझे तो बनना है, कि तो चिंता मंथन माना कैसे बनना है, उसको हम घोटते रहते हैं, घोटते रहते घोटते रहते हैं, बाबा से पूछते हैं, पुरानी मुरलियां पढ़ते हैं, फिर और मुरलियां पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, ये पॉइंट के बारे में और डिटेल में शायद बाबा ने उस मुरली में दिया होगा, उस मुरली में दिया होगा, उस मुरली में दिया होगा, है ना। अपने बड़ों से पूछते भी हैं, दादियों से कोई क्वेश्चन भी करते हैं, है ना, कभी कभी ग्रुप में डिस्कशन भी करते हैं, और मगन इतना चिंतन करते करते इतने मगन हो जाते हैं कि बाबा से कनेक्शन, बाबा से पूछते हैं, बाबा कल आपने कहा ना ये स्वीट का पहाड़ है, बाबा स्वीट का पहाड़ है, और तुम्हें क्या बनना है, बाप और बच्चे को आके मोस्ट स्वीट बनना है, तो बाबा स्वीट, ये स्वीट का पहाड़ क्या होता है, ये स्वीट कैसे बनना है, मोस्ट स्वीट, स्वीट का मतलब क्या है, मीठे का मतलब क्या है, मीठे का क्या मतलब है, क्या है मीठे का मतलब, जैसे मुझे मुझे बाबा मीठा बनना है, बाबा मुझे आपके समान मीठा बनना है, आप बहुत मीठे हो, मुझे मीठा बनना है, तो मैंने मनन, पहले मनन किया, बार बार मुरली पड़ी, फिर चिंतन, मुझे तो बाबा बनना है, अब कैसे बनना है, मीठा बनने का मतलब क्या है, कोई सामने से गाली दे रहा है मैं उसको क्या करूं, अभी सामने से मेरी इंसल्ट कर रहा है मैं क्या करूं, कैसे मीठा बनूं, क्या मतलब है मीठे का, बाबा से पूछता हूं, बाबा क्या अर्थ है इसका, बाबा ने बीच में इशारा भी दिया, तुम्हें देवताएं मीठा माना, स्वीट स्वीटेस्ट माना, देवताएं स्वीटेस्ट है, तुम्हें देवता समान स्वीट सतो प्रधान बनना है, तो बाबा ने कहा बच्चे मुरली में दिया हुआ मैंने, दोबारा पढ़ो, तो मैं दोबारा पढ़ी, समझ तीसरी बार पढ़ी, फिर बाबा ने कहा फिर भी समझ नहीं आया, तो बाबा ने कहा बच्चे स्वीट, स्वीट का मतलब होता सतो प्रधान, मोस्ट स्वीट का मतलब सतो प्रधान, जिसमें ज्ञान भरपूर है, पवित्र, सतो प्रधान सात गुणों, सतो, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, देवताएं सातों गुणों में भरपूर है इसलिए मीठे हैं, उनमें ज्ञान भी है, सत्य की समझ भी है, पवित्रता भी है, शांति भी है, रूहानी प्रेम भी है, अतिंद्रिय सुख भी है, आनंद भी है, आनंद से भरपूर है और सर्वशक्तियों से भरपूर है, इसलिए उनका व्यवहार मीठा है, व्यवहारों में सुख है, व्यवहारों में, व्यवहार में आनंद है, एक दूसरे को सुख और आनंद देते हैं, सुख और आनंद की अनुभूति कराते हैं, ये है मिठास। मैं स्वीट, मैंने कहा बाबा आप स्वीट का पहाड़ कैसे हो, बच्चे मैं सातों गुणों का सागर हूं इसलिए पहाड़, मुझे पहाड़ कहते हैं, सुना, ये मंथन किया ना, मंथन समझ में आया कि मुझे क्या करना है, स्वीट के पहाड़ से क्या बनना है, एनर्जी लेके क्या बनना है, मुझे भी सातों गुणों से भरपूर करके क्या बनना है, स्वीट बनना है, मोस्ट स्वीट बनना है, तो चिंतन ऐसे मंथन किया, फिर सिमरण, अब मुझे याद रखना है कि मुझे मीठा माना सतो प्रधान बनना है, कैसे बनूंगा, बाप को या बाप मेरा सात गुणों का सागर है, स्वीट का पहाड़ है, और वर्षा सतयुग राजधानी, उसको साथ में याद करता हूं, अपने श्री नारायण पद को याद करता हूं, श्री लक्ष्मी पद को याद करता हूं, मुझे ऐसा बनना है, तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे अंदर वो पहाड़, वो मेरे अंदर भी सात गुण आते जाते हैं, तो इस तरह से जितना हम दिल में, दिल ही दिल में, है ना, दिल ही दिल में इस मुरली को, इस लव लेटर को, बाबा के इस लेटर को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, कि क्लाइंट का एक एक महावाक्य पर चिंतन करते हैं, एक एक महावाक्य का मंथन करते हैं, हम अशरीरी बनकर के आए थे, अशरीरी होकर आए, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर ही जाना पड़ेगा, पवित्र आए थे, पवित्र बनकर ही जाना पड़ेगा, अपने आप से महसूस करते हैं, ये सब कुछ यही छोड़ के जाना है, देह दे की दुनिया, देह के संबंध, ये सब यही छोड़ के जाना, दिल से महसूस करते हैं, तो क्या होता है, तो फिर बाप का साथ अनुभव होता है, संबंध की अनुभूति होती है ना, और फिर इस तरह से हमारे अंदर, फिर सिमरण में अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है कि बाबा के उस संबंध का अनुभूति होती रहती है, वो रिकॉर्ड होता है, और ड्रामा, फिर ड्रामा को फेस करने की शक्ति आ जाती, साक्षी दृष्टा रहने की शक्ति आ जाती, कोई कुछ भी बीमारी शरीर में आ गई, हार्ट की बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गई, हड्डियां खराब हो गई, कमर खराब हो गई, माइग्रेन हो गया, या डिप्रेशन हो रहा है, या कोई और बात भी हो रही है, बाहर घर में टेंशन है, वायुमंडल में टेंशन है, बहुत पॉल्यूशन है, वो हमारे अंदर वो शक्ति आ गई अभी, उसको जो हुआ अच्छा, साक्षी रहने की, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होना सबसे अच्छा, तो इस तरह से जब हम दिल में करते जाते तो हमारा विवेक क्या होता है, ये सात एनर्जी से हमारा विवेक बनता है, जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं उससे पवित्रता बनती है हमारे दिल में, हमारे दिल पवित्र बनती, शुद्ध बनती जाती है, शुद्ध बना, अब हम सत्य स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में रहकर, अनादि और आदि स्वरूप में रह करके दूसरे के भी अनादि आदि स्वरूप को देखते हैं और सत्य स्वरूप में व्यवहार करते हैं, आत्मिक व्यवहार, रूहानी व्यवहार करते हैं, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाता है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हुआ, क्योंकि लगाव किसी देहधारी से लगाव रखना चाहे लौकिक चाहे अलौकिक ये भी अपवित्रता है। जिससे जब भी योग करने बैठोगे याद करोगे बाबा को आपको लगाव वाला याद आएगा, झुकाव किसी के साथ झुकाव हो वही याद आएगा, किसी के प्रभाव में आ गए अगर आप, ये भाई तो बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, ये भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, ये बहन जी तो बहुत अच्छी हैं, दीदी तो बहुत अच्छी हैं, सबका रिगार्ड सबका रखो किंतु प्रभाव में सिर्फ एक पर बाबा के रहना है, किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है। किसी टकराव रखना टकराव वाला याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। हम ब्राह्मणों के लिए चार मुख्य अपवित्रताएं हैं, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाएंगे हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म होता जाएगा, पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी। फिर तीसरी जो अपवित्रता हम ब्राह्मणों में है वो है दृष्टिरूपी ड्रामा में क्या क्यों कैसे करने की, क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ। जितना ही बाबा की मुरली को रोज ध्यान से एक एक महावाक्य का रोज मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे उतना हमारे अंदर क्या क्यों कैसे खत्म होता जाएगा। नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने सबसे अच्छा, क्योंकि यह भी अपवित्रता है। इससे वैध संकल्पों का जन्म होता है और वैध संकल्प जहां चलेंगे अपवित्र, वो अपवित्रता है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो अपवित्रता बाबा याद नहीं आएगा। और फिर ब्रह्मचारी माना हम, हमें ये याद रहे कि हम जैसे ब्रह्म तत्व में आत्मा रहती थी वैसे हम व्यवहार करें आपस में, और ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। तो जितना हम ये ज्ञान से जितना करते जाएंगे, ज्ञान का जितना मनन चिंतन करते जाएंगे उतना हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी और फिर शांति आती जाएगी। जब पवित्रता आ जाएगी तो हम बाबा से जुड़ जाएंगे, असोचता बाबा से जुड़ जाएंगे। जब असोचता बाबा से जुड़ जाएंगे तो अब पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, वर्तमान में असोचता बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे। देखना सुनना बोलना खाना पीना उस असोचता बाबा से कंबाइन होकर करेंगे तो हमारे विचारों की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे तो शांति आ जाएगी। जब ऐसी शांति आ जाएगी तो जो भी हमारे आसपास हैं लोग, भाई बहने हैं, उनको हम मन से स्वीकार करेंगे जैसे परमात्मा सबको स्वीकार करता है, तो रूहानी प्यार पैदा होगा। रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख पैदा होगा। अतीन्द्रिय सुख से आनंद, अतीन्द्रिय सुख क्या है, जब इच्छाओं से परे, इच्छाओं से परे की स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। जब आत्मा परमात्मा के संबंध का अनुभव करते हैं, आत्मा परमात्मा की गोद का अनुभव करती है, तो उस समय आत्मा ऐसा महसूस करती है कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करती, संतुष्टता अनुभव करती है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति। तो अतीन्द्रिय सुख क्या है, कोई इच्छा नहीं, बस बाबा मिला सब कुछ मिला। ये जो बाबा की गोद में सूक्ष्म वितरण जब जाके बैठ जाते बाबा की गोद में, तो वो फीलिंग अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। और फिर आनंद, जब आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, मतलब आत्मा देव और देह की दुनिया को बिल्कुल भूल जाती है, लवलीन उसको स्थिति को कहते हैं आनंद। तो वो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। जब अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव हो गया तो फिर शक्तियों का अनुभव होने लगता है, शक्ति आने लगती, सत्य को प्रकटने शक्ति, इसको विवेक कहते हैं। तो इस तरह से जब हमें देखना है हमारा विवेक कैसे बनेगा, विवेक कैसे बना हमारा, बुद्धि में, बुद्धि का ही एक एस्पेक्ट विवेक है। तो जब ज्ञान के पहली छह गुण है, ज्ञान आत्मा के छह गुण है ना, पहले ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद, उस जब अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव हो गया तो हमें अतीन्द्रिय, तो हमें सत्य को प्रकटने शक्ति आ गई, ये हमारा विवेक जागृत हो गया। कल था ना वरदान में विवेक का खून करते हैं, विवेक का खून मतलब सत्य को हम जानते हुए, सत्य हमें सत्य को प्रकटने शक्ति बाबा से मिल चुकी है, उसके बाद भी हम उस विवेक को खून कर रहे हैं। फिर खून कर रहे हैं माना जो अंदर मेरा दिल कह रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं। और जब हम अपने दिल में छह की छह एनर्जी बाबा को दिल में बिठा लेते हैं, आत्मा हूं इसको अंदर धारण कर लेते हैं और चेतना में अपने पक्का कर लेते हैं बाबा मेरे दिल में बैठा है, सात गुणों का साग मेरे दिल में बैठा है, एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, बाबा का आह्वान कर लेते हैं और ड्रामा से साक्षी हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद आ जाता है। और फिर हमें अंदर, फिर हमारा विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, जैसे बाबा जैसा ही हो जाता है। हमारा विवेक हमारा जागृत हो जाता है, विजडम कहते हैं अंग्रेजी में, तो विजडम जागृत हो जाती है। और जब सत्य को परखने की शक्ति हमारे अंदर आ गई तो हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति एक्यूरेट हो जाती, दिव्य हो जाती है, डिवाइन, डिवाइन ना सत्यता पे आधारित हो जाती है, क्योंकि दिल में सत्य है तो विवेक क्या हो गया, ईश्वर जैसा हो गया, और निर्णय शक्ति क्या कैसी हो गई, दिव्य हो गई। इसी को बुद्धि भी कहते, आम भाषा में दिव्य बुद्धि कह देते हैं, तो दिव्य बुद्धि बन गई, तो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र मुझे मिल गया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मिल गई बाबा से गिफ्ट के रूप में, इतना हमने पुरुषार्थ किया ना, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मिल गई। ये इसी को तीसरा नेत्र भी कह देते हैं। और जब दिव्य बुद्धि रूपी मुझे निर्णय शक्ति मेरी दिव्य ऐसी बन गई, एक सेकंड में सही निर्णय कर लेता हूं, अब विस्तार को सार में ले आते हैं। विस्तार को सार में लाना माना जो मेरी मन और जो मेरी बुद्धि देह और देह की दुनिया में खोई हुई थी, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह के स्वभाव संस्कार में खोई हुई थी, उसको मैं समेट करके एबीसीडी में ले आता हूं, बाबा की मुरली में ले आता हूं, अपनी पूरी अटेंशन को बाबा की मुरली में ले आता हूं। पहले मेरी अटेंशन कहां थी, देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह के स्वभाव संस्कार में। अभी मेरी अटेंशन कहां चली गई, टोटली मैं कौन, मेरा कौन, मेरे उससे संबंध की अनुभूति और ड्रामा, इसमें चली गई। सारा दिन मुरली में बुद्धि रहती है, तो ये बन गया मेरा, अब विस्तार सार में आ गया, देह सत्य से सत्य में आ गए। इसको बोलते हैं असत्य से असत्य के झाड़, असत्य का पहाड़ से हमने क्या बना दिया, असत्य के पहाड़ को हमने क्या बना दिया, राई बना दिया। विस्तार को सार में ले आए, जब सार आ गया, सार में समा गए, एबीसीडी में आ गए, ज्ञान में आ गए, मेरे यही मुरली मेरा जीवन है, ये बाबा ही मेरा जीवन है, विस्तार सार में आ गया। अब मैंने मन बुद्धि को समेट के क्या किया, समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन गया, विचार चलने बंद हो गए, बिंदी आत्मा बन परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गया, ये समेटने की शक्ति है ना। एकदम दुनिया से पैकअप कर लिया, और पैकअप करके मैंने मन बुद्धि से बिंदी बन के सारे विचारों को, संकल्प को स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया, और मैं बिंदी बन करके परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गया। अब करंट आने लगी, ये करंट आने लगती है, ये करंट आने लगी। अब करंट जब आने लगी तो क्या हुआ, अब जो मेरे आसपास जो मुझे लोग तंग कर रहे थे, कोई भी हो सकते हैं, लौकिक में, अलौकिक में, घर में, सेंटर में, बाहर दुनिया में, जो मुझे मेरा शरीर मुझे तंग कर रहा था, अब क्या हुआ, सहन करने की शक्ति आ गई। आई नहीं आई, करंट आई तो सहन करने की शक्ति आई ना, करंट नहीं आती तो सहन करने की शक्ति नहीं आती, तो रोते रहते हैं हम लोग, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है ना, क्या करूं, कहां जाऊं, है ना, सोचा था बाबा के घर में जाके शांति मिलेगी, वहां भी शांति नहीं मिली है ना, बीके बन के शांति मिलेगी, वहां भी नहीं मिली है ना, क्योंकि करंट तो आई नहीं। अब करंट आई तो बिजली आ गई, तो अब लगा सब ठीक है, सहन कर लिया है ना। अब मेरा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उसको तंग किया हुआ था, उस मेरे को रोज तंग करता था, तंग करती थी, अब क्या हुआ, मैंने सहन कर लिया, अब क्या हुआ, विक्रम विनाश हुआ नहीं हुआ, अब करंट आने लगी तो विक्रम विनाश होने लगा ना, अब विक्रम विनाश होने लगा, सहन करने शक्ति आ गई, सहन करने शक्ति आई तो समाने की शक्ति आ गई, क्योंकि बाबा से करंट आ रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा पैसा कुछ कर, मेरी कुछ ताकत खर्च नहीं हो रही, करंट वहां से आ रही है, मैं सहन कर रहा हूं, अब मुझे किसको बोलने की आवश्यकता है क्या, मेरा बुद्धि वहीं लगी हुई है, बाबा के पास बुद्धि हो गए ना, वहां लगा वो बाबा के पास, अब सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई। अब वही व्यक्ति जो तंग कर रहा है वो सामने आ कहता है, भाई साहब मेरे को ये कर दो, मेरी मदद करो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, अच्छा भाई साहब लो, क्योंकि करंट आ रही है इसलिए ना, पहले करंट आती नहीं थी, चिल्लाते थे हम लोग, चिड़चिड़ करते थे अंदर अंदर, बाहर भी चिड़चिड़ करते थे, अभी देखो तंग कर रहा था, अभी इंसल्ट कर रहा था, अभी देखो मांगने आ गए, है ना, अभी क्या करते, नहीं रहम दिल बन के उसकी मदद करते। तो सातों या आठों शक्तियां आ गई, ठीक है, अब आठों शक्तियां आ गई तो इसका अब बैलेंस हो गया। अब क्या, जब आठों शक्तियां आती तो अब पहले क्या था, ज्ञान बहुत था, पवित्रता नहीं थी, किसी के प्रति लगाव था, थोड़ा छोड़ा नहीं था, किसी के प्रति टकराव था, उसको बुद्धि से माफ नहीं किया था, किसी बात में क्या क्यों कैसे चल रहा था, घर में या यज्ञ में पवित्रता थी, थोड़ी सी शांति नहीं थी, कोई ना कोई पास की बात चुपती थी, किसी का शक्ल देख के चुपता था अंदर से, आगे क्या होगा कुछ चिंता होती थी कभी कभी। प्यार रूहानी प्यार, चलो शांति तो थी, रूहानी प्यार नहीं था। किसी व्यक्ति को हमने स्वीकार नहीं किया था दिल से, कोई ना कोई व्यक्ति, नहीं इसको तो हमने स्वीकार कर सकते, इसने मेरे को बहुत तंग किया हुआ है, रूहानी प्यार नहीं था, कम था। ज्ञान बहुत था, पवित्रता भी थी, ब्रह्मचर्य भी था, ब्रह्मचारी भी थे, किंतु प्यार नहीं था। प्यार था, चलो प्यार भी था, अतिंद्र सुख नहीं था, इच्छो इच्छा रह गई थी। ये मेरे को लोग पूछे जरा, सेंटर वाली बहन जी तो पूछे, घर वाले तो पूछते नहीं, सेंटर वाली बहन जी तो पूछे, मैं सेंटर में इतना करता हूं, इतनी करती हूं, तो मेरे को पूछता ही नहीं है। इच्छा, यही इच्छा हमको अतिंद्र सुख की अनुभूति नहीं करने देती, आनंद कोई ना कोई देह की दुनिया की चीज को मुझे अट्रैक्ट करती थी, तो आनंद नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे अंदर जब सातो एनर्जी का बैलेंस, जब आठ शक्तियां आ गई तो सातो एनर्जी बैलेंस में हो जाती है, और जब ये आठों शक्तियां बैलेंस होती है तो चित्त, चित्त किस चीज से बना हुआ है, ज्ञान से, ज्ञान से दिल बना हुआ है, ज्ञान से क्या बना हुआ है, दिल। ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद से दिल बना हुआ है हमारा, कॉन्शियस चेतना बनी हुई है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। सत्य को परखने की शक्ति से हमारा विवेक बना हुआ है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति से हमारा बुद्धि बनी हुई, जिसे हम कहते हैं निर्णय शक्ति, या तीसरा नेत्र बना हुआ है, ज्ञान का तीसरा नेत्र बना हुआ है, और छह शक्तियों से विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति, इन छह शक्तियों से हमारा चित्त बना हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड बना हुआ है। ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई? तो बुद्धि के चार आस्पेक्ट है। अगर मेरे दिल में सत्य है, बाबा मेरे दिल में, बाबा और बाबा का ज्ञान मेरे दिल में है, तो मेरा विवेक ईश्वर जैसा है, निर्णय शक्ति दिव्य है, मतलब दिव्य माना सत्यता पे आधारित है, पवित्रता निर्भयता पे आधारित है, अंतर्मुखता पे आधारित है, बेहद की वैराग्य वृत्ति पे आधारित है, एकाग्रता पे आधारित है, सरलता नम्रता उदारता पे आधारित है, धीरेता गंभीरता रमणीकता पे आधारित है, संतुष्टता हर्षित मुक्ता पे आधारित है, सहनशीलता दृढ़ता पे आधारित है, आज्ञाकारिता वफादारी ईमानदारी फरमानबरदारी पे आधारित है। इसको बोलते दिव्य बुद्धि। जो बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, तो अगर दिल में बाबा है, इसे कहते हैं दिल में जिसके बाबा है, बाबा और बाबा का ज्ञान है, उसका विवेक ईश्वर जैसा बन जाता है, उसकी निर्णय शक्ति दिव्य बन जाती है। जिसके दिल में बाबा है, उसका बुद्धि क्या हो जाएगी, निर्णय शक्ति क्या, दिव्य हो जाएगी, भगवान जैसी हो जाएगी, उसमें डिवाइन हो जाएगी, उसका चित्त शांत एकाग्र आनंदमय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिल क्या बन जाएगा, शांत एकाग्र और आनंदमय बन जाएगा। इसको बोलते सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि। दिल में अगर सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। बात क्लियर हुई आप लोगों की? बात अगर मेरे दिल में सत्य है तो मेरा चित्त आनंद स्वरूप है, मेरा विवेक ईश्वर जैसा बन गया, भगवान जैसा बन गया, और मेरी निर्णय शक्ति ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल गया, दिव्य बुद्धि का नेत्र खुल गया, अब मेरा चित्त शांत हो गया, एकाग्र आनंदमय हो गया। तो परमात्मा के दिल में क्या है, परमात्मा का दिल कैसा है, शिव बाबा का दिल कैसा है, सातो एनर्जी का सागर है, ओशियन है, पावर हाउस है, उसका विवेक कैसा है, सत्य को परखा हुआ है उसने, यथार्थ निर्णय सदा ही किया, और बुद्धिमानों की बुद्धि है, और चित्त सदा ही उसका आनंदमय है, परमात्मा का सदा ही है सच्चित, सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप, सत्य दिल में सत्य है बाबा के, चित्त सदा ही आनंद स्वरूप है। किंतु अगर मेरे दिल में जरा भी असत्य आ गया, थोड़ा सा देह भान आ गया, कोई देह के संबंध की याद आ गई, कोई नाम मान शान की इच्छा आ गई, किसी को मैंने स्वीकार नहीं किया, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा चिपता है अंदर से, तो मेरा विवेक कंफ्यूज हो गया, विवेक का खून हो गया। क्या हो गया? विवेक का पवित्रता नहीं होगी, फिर शांति नहीं होगी, फिर प्रेम नहीं होगा, रूहानी प्यार अत्यंत सुख आनंद नहीं होगा, तो चित्त कैसा हो गया, मेरा विवेक कैसा हो गया? कंफ्यूज, विवेक का खून हो गया। खून माना, अब मुझे पता है गलत क्या है ठीक क्या है, बाबा का बच्चा बन गया हूं, ज्ञान मुझे समझ है कि तू, अब मैं गलत सोचता कुछ हूं, गलत करता कुछ और हूं, निर्णय गलत कर, निर्णय गलत हो रहे हैं। अब राई का पहाड़ बन रहा है, पहले पहाड़ का राई बनता था, अभी क्या बन रहा है? अब सार विस्तार में जा रहा है, विस्तार को सार में ले जा रहे, राई का क्या बना रहे हैं? पहाड़ बना रहे हैं। और समेटिक शक्ति कहां गई? समेटिक शक्ति खत्म हो गई। अब कितना कोशिश करते हैं बुद्धि को ऊपर लगाऊं, लगते ही नहीं, बुद्धि ऊपर पहुंचती नहीं है। कभी ये ख्याल आता है, कभी ये ख्याल आता है, कभी उसका ख्याल आता है, कभी यहां का ख्याल आता है, कभी यहां का ख्याल आता है, कभी यहां का ख्याल आता है, कभी इसके संकल्प चलते हैं, बैठते योग करने हैं, संकल्प किसके चल रहे हैं, है ना, देह और देह की दुनिया के संकल्प चलते हैं, फिर चैन होता नहीं, समाया जाता, एक छोटी छोटी बात को 10 लोगों को बताते हैं, पता है आपको मिल चुके, पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, पता है वहां भी ऐसे होता है, पता वहां भी ऐसा होता है, पता वो भी ऐसे करते हैं, सहन करके समा नहीं सकते हैं, और फिर सामना नहीं कर सकते, नहीं डरते हैं सामना करने से, और सहयोग किसे कर नहीं सकते हैं, हर बात में नाजी नाजी करते रहते हैं, हाजी नहीं करते। क्लियर हुआ आपको? तो क्या होगा अगर दिल में असत्य आ गया जरा भी, तो चित्त कैसा हो जाएगा? अशांत, चंचल, बेचैन, अशांत, चंचल, बेचैन, दुखी हो जाएगा। और जैसा चित्त वैसा चिंतन, कहावत है ना, जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन। तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे दिल में अगर बेचैन है, मेरा चित्त बेचैन है, है ना, कहते हैं पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित्त क्या पाए, चैन पाए, है ना, चित्त चैन पाए, चित्त बेचैन है ना, क्योंकि दिल में असत्य है। मेरे चित्त के आधार पे जैसा मेरा चित्त में जो चलता है, चित्त जैसा है, उसके आधार पे मेरा मन, कॉन्शियस माइंड चलता है, चेतन मन चलता है। चेतन मन क्या है? जो फाइल है ना आत्मा में, आत्मा में फाइल्स है, संस्कारों के फाइल्स हैं, स्मृतियों के फाइल्स हैं, पुराने जन्मों के स्मृतियां हैं, है ना, सत्यों की स्मृति भी है, सत्यों की त्रेता की स्मृति भी है, पिछले जन्म के ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति भी है, फरिश्ता स्वरूप की स्मृति भी है, देवता स्वरूप की स्मृति भी है, सारी स्मृतियां अंदर हैं, और कलयुग द्वापर की स्मृति भी है, कलयुग की स्मृति भी है, सब अंदर रिकॉर्ड है। तो जैसा अगर मैं चित्त आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप की फाइल खुलेंगी, पिछले कल्प के ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुल जाएगी, अपने आप ही खुल जाएगी ब्राह्मण स्वरूप की फाइल। जब मैं परफेक्ट ब्राह्मण था, सदा ही बाबा की बुद्धि, बाबा की मुरली का मनन, बाबा सदा याद रहता था, परफेक्ट लास्ट ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति की फाइल खुल जाएगी, देवता स्वरूप की फाइल खुल जाएगी, क्योंकि आनंद, तीनों स्थिति आनंद की स्थिति है, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और संपूर्ण आनंद देवता स्वरूप, ये तीनों की तीनों स्थिति कैसी, आनंद स्वरूप की स्थिति है। तो अगर मैं आनंद स्वरूप में रचित होगा, तो अपने आप फाइल खुल जाती है उसकी, पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण सो परिष्ठा सो देवता स्वरूप की फाइल खुल जाती है, और जैसी जैसी फाइल, जैसी स्मृति खुलती है, वैसी स्थिति बन जाती है। तो चलते फिरते याद आता है, अरे मैं तो, ये तो मेरे को ये लगता है सब, ये तो व्यक्ति मुझे पहचाने हुए ना, ये तो ये बहन जी पहचानी हुई ना, ये भाई जी तो पहचाने हुए ना, पिछले जन्म हमारे साथ थे ना, ये पिछले जन्म के हमारे संबंधी है ना, ये उनका ब्राह्मण स्वरूप दिखाई देता है, उनका फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता है, उनका देवता स्वरूप दिखाई देता है, अपने आप दिखाई देने लगता है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति मेरी बन जाती है। ब्राह्मण माना विशाल बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि वाले, हमारी बुद्धि बेहद की बन जाती है। फरिश्ता माना बेहद के मन वाले, जिनके मन बेहद में रहता है, बेहद माना अब हमेशा सत्युग में लगा रहता है, सुखधाम में लगा रहता है, देवी देवता स्वरूप में लगा रहता है। देवता माना बेहद के संस्कार वाले देवता। तो इन तीनों स्थिति में हमारा स्थिति बन जाती है। जब ये तीनों रूहानी स्थितियां हैं, तो जैसी रूहानी स्थिति होगी, तो रूहानी वृत्ति बन जाती है। जैसी रूहानी वृत्ति बनती है तो रूहानी दृष्टि बन जाती है, फिर सब जगह यही लगता है कि ये भी आत्मा है, हम मेरे भाई हैं, ये भाई नहीं, ये बहन नहीं, ये भाई है, ये भी मेरे आत्मा रूप में भाई है। तो बहन के ऊपर, बहन के शरीर पर दृष्टि नहीं जाती है, भाई के शरीर पर दृष्टि नहीं जाती है, रूहानी दृष्टि बन जाती है। जब रूहानी दृष्टि बनती है तो रूहानी वायुमंडल बन जाता है, मेरा आभा मंडल रूहानियत से भर जाता है, उसमें जो भी आएगा वो भी रूहानियत का महसूस करने लगता है, रूहानियत से भरपूर हो जाता है। जो भी आएगा, कैसे भी संकल्प बाहर से करता आए, खराब से खराब, कोई पापात्मा भी सामने आए, आतंकवादी भी सामने आए, चोर डाकू भी सामने आए, उसकी वृत्ति भी बदल जाएगी, उसके संकल्प भी बदल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? स्मृति से स्थिति बनती है और स्थिति से वृत्ति बनती है। तो वृत्ति बनी मेरी, वृत्ति से रूहानी, वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनी और रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बन गया। वो जो आप चाहो जितना चाहे बना सकते हो, जितना दिल में, कहते हैं गीता ना, दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूं मैं बंद आंखें, है ना, पूजा करूं मैं तेरी, ये तो फिल्मी गीता है कि तू दिल ही दिल में गुप्त रूप में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय लगन लग जाए, बाबा और बाबा की मुरली, बाबा और बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, दुनिया वाले ने क्या कहा वो नहीं, वो सोचना नहीं है, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, लगन लग जाए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है। पागल हो जाओ थोड़ा सा, क्या बन जाओ थोड़ा सा, प्यार में पागल, नहीं प्यार में पागल बनना, आशिक माशुक क्या होते, पागल होते हैं ना, पागल होते हैं, सेंस वाले होते हैं, थोड़े थोड़े पागल होते हैं ना, दुनिया की परवाह नहीं करते, लोकलाज की परवाह नहीं करते, तो थोड़े से पागल बनना, थोड़ा सा ऐसे आशिक माशुक जैसा प्यार हो जाए। आज मुझे ना याद सतानी चाहिए, याद भूलनी नहीं चाहिए, सतानी चाहिए, खाना ऐसे तो ऐसी लगन लग जाए ना जब, तो फिर क्या हो, ऐसे में जो आते ही उसके आने के उसकी भावना बदल जाएगी, हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना हमारे अंदर भी पैदा होगी और उनके अंदर आने वाले के अंदर भी शुभ भावना शुभकामना पैदा होगी, और मेरे से शुभ 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 श्रेष्ठ वाइब्रेशन, कल्याण के वाइब्रेशन सारी दुनिया में, खाली यहां नहीं, सारे विश्व में जो भी आत्माएं डिमांड कर रही हैं, जो रिसीविंग मोड में है, रिसीविंग मोड में ना, जो भगवान को याद कर रही है, जो विषय विकार में खोए उनको नहीं, उनके लिए नहीं, जैसे आज पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट है, दाखिल है, आईसीयू में दाखिल है, एक्सीडेंट हो गया है, वो बाबा को याद कर रही है, भगवान को याद कर, किसी रूप में याद कर, हनुमान के रूप में याद कर रही, शेरा वाली माता के रूप में याद कर रही है, पर याद कर रही है, उनकी लाइन एंगेज नहीं है, उनके रिश्तेदार हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, भगवान को याद कर रहे हैं, उनको वो भावना पहुंचेगी, उनके वाइब्रेशन पहुंचे, सबको नहीं पहुंचेंगे। मनसा सेवा क्या असर कहां पर होता है, जो एंगेज है उनको असर नहीं होता है, जो विषय विकारों में खोए उनको असर नहीं होता है, जिनकी लाइन, जिनको भगवान को किसी रूप में भी याद कर रहे हैं उनको असर होता है, उनको हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं। अभी 99% लोग खोए हैं विषय विकारों में, जब दुख के पहाड़ गिरेंगे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, बम गिरेंगे, तो हर आत्मा भगवान को याद करेगा, तो हर आत्मा तक हमारे मनसा वाइब्रेशन पहुंचेंगे, उनको साक्षात्कार होंगे, वाइब्रेशन के साथ साथ साक्षात्कार भी, हम यहां होंगे, साक्षात्कार वहां हो रहे होंगे, कहीं भी देश में, किसी भी देश में साक्षात्कार हो रहे होंगे, तो ये वाइब्रेशन का असर पड़ेगा, उन वाइब्रेशन से क्या होगा, उनके अंदर शुभ पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा होंगे, उनके शरीर के दर्द खत्म हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी, दबे होंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, अगर ठीक होने वाले हैं तो ठीक हो जाएंगे, नेत्र खराब होंगे नेत्र मिल जाएंगे, दुख खत्म, तो उनको लगेगा देवता मेरे सामने आए, फरिश्ते मेरे इष्ट मेरे सामने आए। तो इस तरह से जब दिल अपनी बुद्धि और अपने जब दिल में बाबा को भर लेंगे, बाबा की यादों को भर लेंगे, तो हमारा चित्त क्या होगा, शांत स्वरूप, शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा, उससे अपने आप हमारी पुरानी स्मृतियां पुराने संस्कार दब जाएंगे, और हमारे पावन सतो प्रधान संस्कार, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, और उससे हमारी स्थिति बदलेगी, स्थिति से रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनेगा, और रूहानी वायुमंडल से जो भी हमारे आसपास होंगे वो तो बच ही जाएंगे, उनके तो संकल्प चेंज हो ही जाएंगे, भावनाएं पर चेंज, उनकी वृत्ति बदल जाएगी, भावना बदल जाएगी उस वायुमंडल के असर से, और उनके उनके हमारी भावना सारे विश्व में जाएगी, उससे वाइब्रेशन सारे विश्व में जाएंगे, उनको फिर फील होगा जैसे मिसाइल जाता है ना, मिसाइल ऐसी हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक असर करेंगे, और उस पर हमारे संकल्प टैग होंगे और संकल्प जाके उनका परिवर्तन कर देंगे, नई सृष्टि की स्थापना कर देंगे। जो मुक्ति को पाने वाले मुक्ति पा जाएंगे, और जीवन मुक्ति को पाने वाले जीवन मुक्ति में बाबा के साथ घर चलेंगे। तो इस तरह से सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति, अगर मेरे दिल मेरा चित्त अगर अशांत है, एक चंचल है, बेचैन है, तो फाइल कौन सी खुलेगी? तमो प्रधान फाइल खुलेंगी, विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की फाइल खुलेंगी, देह के संबंधों की फाइल खुलेंगी, रोएंगे, वो मरेंगे हम रोएंगे, वो रोएंगे हम नहीं रोएंगे, दुनिया वाले रोएंगे, है ना, क्योंकि दिल में असत्य होगा, उनके चित्त बेचैन होगा, तो फाइलें तमो प्रधान स्वरूप की फाइलें खुलेंगी, और उनके कारण देह और देह के संबंध के कारण वो तड़फेंगे, पदार्थ मकान टूट रहे होंगे वो तड़फेंगे, रोएंगे, शरीर में तकलीफें होंगी रोएंगे, वृत्ति ऐसी हो जाएगी, देह की वृत्ति, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव की वृत्ति होगी, और उसके कारण दृष्टि भी वैसी होगी, और वैसा ही वायुमंडल होगा उनका, हाहाकार का वायुमंडल होगा, और भावना भी वैसी होगी, गलत वाइब्रेशन सारी जगह फैलेंगे, अशुद्ध आत्माएं, अजबील सोल्स का प्रभाव हो जाएगा सारी दुनिया पे, और फिर वैसी दुनिया दिखाई देगी, नरक दिखाई देगा, बिल्कुल बेहद नरक दिखाई देगा। तो जिसको जो आत्माएं जिनका सच्चित आनंद स्वरूप वाली आत्माएं होंगी, हम बाबा के बच्चे, तो हमारे लिए स्वर्ग दिखाई देगा हमको, और जो अब भी जागेंगे नहीं उनको क्या दिखाई देगा? नरक दिखाई देगा, वो हाहाकार करेंगे, और यहां पर जय जयकार होंगे, हम सीन सीनरी देख रहे होंगे सत्युग की, और वो देख रहे होंगे विनाश के नजारे, हम विनाश के नजारे नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? सत्युग की सीन सीनरी देखेंगे। तो इस तरह से जब हम पुरुषार्थ करेंगे, इसका एक ही साधन है, बाबा और बाबा की मुरली, आज की मुरली और कल की मुरली दोनों मुरली मिला लें तो चार नियम और चार मर्यादाएं, कल बाबा ने इस पे आज भी जांच करने को कल भी जांच करने के लिए कहा था, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, धरती इधर से उधर हो जाए, भले बीमार हो, बुखार है, तकलीफ है, हॉस्पिटल में हो, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो, क्योंकि चार से पांच के साढ़े तीन से पांच बजे के बीच में ही सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले हैं, ये गारंटी है, आपने अभी भी देखते हो ज्यादातर भूकंप ज्यादातर प्रॉब्लम्स रात में ही आती हैं। अगर हमें उस समय आदत होगी ना, अपना आभा मंडल बना के बैठे होंगे औरा बना के, तो आसपास विनाश होगा किंतु हमारा आभा मंडल कारण उस एरिया में विनाश नहीं होगा, हम दब के नहीं मरेंगे, बह नहीं जाएंगे, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाएंगे, मक्खन में से बाल के माफी, तो अमृत वेला कभी मिस ना करो। दूसरी बात, मुरली कभी मिस ना करो, कुछ भी हो जाए सेंटर पर जरूर जाओ मुरली सुनने के लिए, घर में नहीं, टीवी पे नहीं, मोबाइल में नहीं, भगवान की मुरली भगवान के घर में जाके सुनो, कभी मिस मत करो, सारे काम छोड़ दो, मुरली कभी मिस मत करो, सेंटर पे जाओ, आजकल हम सेंटर पे देखते हैं, सेंटर पे कम आते हैं, घरों में ज्यादा सुनते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होती अंदर, धारणा में नहीं है, शक्ति नहीं मिलती है, जो भी बहन या भाई निमित्त बन के सुनाते हैं बाबा उनकी तरह शक्ति भी बढ़ता है आपके अंदर, वो मुरली को धारण करने शक्ति भी मिलती है, वो रिकॉर्डिंग रूम है, वो स्टूडियो है, जैसे हमारा स्टूडियो ना गॉडलीवुड स्टूडियो, हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो सेंटर नहीं है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहां पे रोज जाओ, कैसे भी करके जाओ, नौकरी आगे पीछे कर दो पर मोह मिस ना करो, बच्चों को आगे पीछे कर दो, है ना, स्कूल जाना है उनको आगे पीछे कर दो, तो आप वो मिस ना करो, तो मुरली रोज जाओ, और सारा दिन अटेंशन रखो, मुरली को 20 बार 30 बार रिवाइज करो, एक एक लाइन दो दो लाइन, हाँ जी बस बोले तो मुरली को रिवाइज करो, और सोने के पहले लेटर लिखो, मेरे आज मैंने क्या क्या गलतियां की, लिखो आज बाबा मैंने ये गलती हो गई, आज मेरी ये गलती हो, आज ये गलती हो गई, आज ये गलती हो गई, आज मैंने ये खामी मेरे अंदर आई, आज मैंने वहां गलत देखा, गलत सुना, गलत बोला, गलत खाया, लिखो, गलतियां होंगी, लिखो लेटर, लिखो लेटर, लिखो, एक्सेप्ट करो, साइन करो, और बाबा को लेके फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर याद का चार्ट भरो, घंटे घंटे की याद का चार्ट बनाओ, और फिर पूरी मुरली पढ़ो सोने के पहले, मन प्लेन हो जाएगा, और सो फिर तीन मिनट बाबा को याद कर सो जाओ, 10 बजे के पहले सो जाओ कोशिश करके। तो ये 4 नियम है बाबा, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब मन की सब कोतामेल बाबा को दे दो, जैसा है जो है जैसा सच्चाई से लिख दो, सच्चाई से बताओ और याद में बाबा की गोद में सो जाओ। ये चार मर्यादाएं, पवित्रता की डिटेल में मैं परिभाषा की, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से मुक्त, क्या क्यों कैसे से मुक्त, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य दूसरों के सत्य स्वरूप को देखो, सत्य स्वरूप में व्यवहार करो, ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी। तो गहराई से पवित्रता को जीवन में लाओ, ऊपर ऊपर की पवित्रता नहीं, बहुत गहरी पवित्रता। फिर दूसरा अन्न, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में करो, और 7 गुणों को बढ़ाने वाला पराठा पकौड़ा समोसा राजसिक भोजन आलस पैदा करेगा। चाय कॉफी पियोगे बहुत सारी, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो क्या होगा, तामसिक भोजन है, उत्तेजना पैदा करने वाला। मिर्चे खाओगे, गरम मसाले खाओगे, उत्तेजना पैदा करेगा। महाराष्ट्र में बहुत मिर्चे खाते हैं ना, हरी मिर्च खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको है? रगड़ा क्या कहते हैं, तगड़ा कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो नहीं खाया करो, ब्राह्मणों को अचार नहीं खाना चाहिए, है ना, तामसिक उत्तेजना पैदा करता है, तो अन्न नहीं खाओ, है ना। और तीसरी चीज है सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग करो बस, और कुछ चीजें और व्हाट्सएप, फेसबुक, ये बुक वो बुक, टीवी, अखबार सब छोड़ दो, कोई मैगजीन, दूसरों के मैगजीन नहीं, एक बाबा और बाबा का संग, और बाबा ने जो विधि बताई वही योग की यूज करो। कोई मुद्रा लगा के बैठता है, कोई कुछ करके बैठता है, कोई प्राणायाम भी साथ साथ कर रहा है, वो चलता नहीं है बाबा के पास, है ना। बस एक बाबा का ही हमारे सब कुछ, बाबा ही हमारा सब कुछ है। और चौथा दैवी गुणों की धारणा, कभी जल्दीबाजी नहीं करो, चिंता नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, उदास मत हो जाओ। जब भी उदासी आए, चिंता आए, बाबा की मुरली लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक हो जाओ। तो जब ऐसा हम सारा दिन करेंगे, अटेंशन रखें, 4 नियम 4 मर्यादा है, योग लगे नहीं लगे, मुरली समझ आए नहीं आए, मुरली में जरूर जाओ, मुरली को बार बार पढ़ो, अपने आप पक्की हो जाएगी। मैंने तो ऐसे किया है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही किया है ना? मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की, कभी चार्ट, कभी अटेंशन मुरली में बीच में पढ़ता रहता हूँ बार बार, और सोने के पहले लेटर लिखता हूँ, रोज चार्ट भरता हूँ, मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सोता हूँ। कि 4 नियम और 4 मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, ये 4 हमारे परहेज हैं। तो देखोगे बुद्धि सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएगी, उससे ऑटोमेटिक हमारा रूहानी स्थिति बन जाएगी, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता की स्थिति बनेगी, और उससे फिर हमारी वृत्ति रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल पैदा हो जाएगा, फिर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे विश्व में जाएंगे, और पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा होंगे, उससे नई सृष्टि की स्थापना होगी, हमारे शरीर में परिवर्तन होगा और दूसरों के भी दुनिया में 5 तत्वों में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम सभी जो सच्चित आनंद स्वरूप शिव बाबा है, उसके बच्चे भी हम सच्चित आनंद स्वरूप बन के मनुष्य से देवता बन करके, यहीं पर देवता बनना है, यहीं देवता बन करके फिर बाप के साथ समान बन के साथ में घर जाएंगे। ओम शांति। Thank you.
یہاں کی نشے